मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबके सामने परिच्छेद की चर्चा करने जा रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि शुक्रवार को भी मैंने एक परिच्छेद की ही चर्चा की थी, और जैसा कि मैंने बताया कि अब चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ परिच्छेदों की चर्चा पहले कर लेनी चाहिए। तो आज जो मैंने परिच्छेद चुना है वह है क्वेश्चन नंबर 32, और जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वह है डी। बेहतर होगा कि यदि आपके पास यह सेट हो तो उसमें से आप 32 नंबर के क्वेश्चन को निकाल लें, और यदि कोई दूसरा सेट हो तो आप देख लें कि यह प्रश्न कितने नंबर पर है और उसे आप खोल लें। इससे आपको थोड़ा सा अधिक लाभ मिल सकेगा। मैंने जानबूझ करके इस परिच्छेद का चयन किया है क्योंकि इस परिच्छेद का जो चरित्र है वो मुझे थोड़ा सा अलग तरीके का दिखाई दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी अगर हम बात करेंगे तो आपको इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक अतिरिक्त लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि इससे पहले आपने एक परिच्छेद के बारे में मुझे सुना है, अब आज आप दूसरे परिच्छेद के बारे में सुनने जा रहे हैं। यदि आप मुझे इनके बारे में अपनी राय दे सकेंगे कि आपको कैसा लगा, आपको कितने फायदे की उम्मीद लग रही है, आपकी दृष्टि स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, कुछ टेक्निक आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, या नहीं पकड़ पाए तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, यदि आप इन सब के बारे में मुझे बता सकेंगे तो आगे चर्चा और अधिक बेहतर तरीके से आप लोगों के अनुसार कर सकूंगा। नहीं तो देखिए, मैं तो अपने आइलैंड में बैठा हुआ, हो सकता है कि अपनी बात कर रहा हूं और अपनी पीठ भी थपथपा रहा हूं, लेकिन आपके वो किसी काम का ना हो। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन, एक जो लाइव कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से बनाए रखें। तो अब मैं परिच्छेद आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, परिच्छेद है, प्रतिवर्ष जून से सितंबर के 4 महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रवाहों में अत्यधिक विषम, ऋतुनिष्ठ एवं स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है। शायद रिदम नहीं आ पाया, मैं रिदम लाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रतिवर्ष जून से सितंबर के 4 महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रवाहों के अत्यधिक विषम, वस्तुनिष्ठ एवं स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है, क्योंकि इन कुछ महीनों में ही अधिकांश वृष्टि होती है एवं परिणामतः स्वच्छ जल उपलब्ध होता है। जलाशयों में वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता और बाद में वर्ष भर उपयोग हेतु छोड़ना एक ऐसी अनिवार्यता है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। जलवायु परिवर्तन मौसम की स्थितियों को सदा प्रभावित करता रहेगा और जल की अल्पता तथा इसके आधिक्य को उत्पन्न करेगा। जहां लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, वहीं देश की कई नदियों में पानी अप्रयुक्त बहता रहता है और प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है। ये परिच्छेद है, राइट? इस परिच्छेद को सुनने के बाद आपको पहला काम यह करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही सही, आप सोचने की कोशिश करें कि इसमें कौन सी बात कही गई है, क्योंकि वह उसकी आत्मा होती है। जब आप आत्मा को पकड़ लेते हैं तो फिर जो विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। शुरुआत में जब मैं परिच्छेद पढ़ रहा था तो आपने देखा कि मैंने एक अलग स्टाइल से पढ़ा, और इसके बाद मैंने कहा कि इसमें से रिदम गायब हो गया है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। उस पर भी आप थोड़ा विचार करें, ऐसा मैंने जानबूझकर किया था। मैं आपको एक डेमो देना चाहता था कि परिच्छेद के पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। एक तरीका तो वह होता है कि हम शब्दों को पढ़ गए, बात खत्म हो गई। दूसरा तरीका यह होता है कि हम उसको रिदम के साथ पढ़ रहे हैं, जिससे कि वह बोध हमारे अंदर समा सके कि इसमें कहा क्या जा रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। और अभी जो हम करने जा रहे हैं वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंततः कहा क्या जा रहा है। कहा क्या गया है, नहीं, कहा क्या जा रहा है। गया का संबंध पूरी तरह से आप कह लीजिए शब्दार्थ से है, और कहा जा रहा है का संबंध जो है भावार्थ से है। तो आप किस तरीके से पढ़ते हैं यह भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मैंने जानबूझ करके आपके सामने वह एक नमूना पेश किया है। अब आइए इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देख लेते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टि से, याद रखिए भारत की दृष्टि से, सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यावहारिक निहितार्थ हो सकता है? सर्वाधिक तर्कसंगत यानी मोस्ट रैशनल, और व्यावहारिक निहितार्थ एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, याद रखिए कि इसमें प्रैक्टिकल की बात कही गई है, सीधे सीधे नहीं कि आप कुछ भी निकाल करके दे, प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो क्या निहितार्थ है, इसमें कौन सा अर्थ निहित है, यानी कि वही कि आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट यहां बात नहीं कही गई है लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा रैशनल भी है, यानी कि वो इमोशनल है, ऐसा नहीं, रैशनल है, ऐसा किया जा सकता है। रैशनल का मतलब क्या है, संभावित, व्यावहारिकता का मतलब भी वही है, प्रैक्टिकल का मतलब भी वही है। तो दोस्तों इसमें 5 विकल्प दिए गए हैं, सामान्यतः 4 ही होते हैं लेकिन इसमें 5 दिए गए हैं। देखिए पहला विकल्प क्या है, नदियों के अंतः संबंधों को प्रारंभ किया जाना चाहिए। देखिए इसमें जो बात कही गई है वो क्या है, है ना कि हमारा जो पानी का जो संकलन है, संचयन है, वो 4 महीनों में होता है, कभी बारिश ज्यादा हो रही है, कभी बारिश कम हो रही है, उसी को हम संचित करते हैं, फिर उस संचित किए हुए पानी को ही फिर हम अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कहीं पानी ज्यादा होता है कहीं कम होता है, इसी संकट से हम जूझ रहे हैं, कहीं पानी बह रहा है, कहीं हम बचा नहीं पा रहे हैं, कहीं हम बचा ले रहे हैं, इस तरह की बात कही गई है, ये इसकी आत्मा है। तो जो पहली बात है, वो जो पहला विकल्प है वो है नदियों के अंतः संबंधों को, संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। अंतः संबंधन का मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स शुड बी अंडरटेकन, और डेफिनेटली अगर ऐसा कर दिया जाता है तो पानी जो कहीं कम है अधिक है उनको हम बकायदे आप यू चैनलाइज कर सकेंगे, जो बिल्कुल सही है, क्या सही नहीं है? जो संकट बताया जा रहा है इसी से तो संबंधित है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये तो है ही है। इसके बाद जो दूसरा है वो है जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों एवं नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं दूसरे का भी संबंध पहले जैसा ही है, पहले में यह है कि आप नदियों को एक दूसरे से जोड़ दें, और हमारे यहां देखिए नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं चल रही हैं और यह व्यवहारिक है, यह किया भी जा सकता है। दूसरा फिर ये कह रहे हैं कि हम सभी जगह पानी की सप्लाई को ठीक कर सके पूरे देश में, तो जगह जगह बांध बनाएं और बांध से फिर दहरे निकाल करके उनका एक नेटवर्क तैयार कर दें, तो फिर कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं अधिक बारिश हो रही है, कहीं पानी बह करके बेकार जा रहा है, तो इन सबको हम एक तरह से रेगुलेट कर सकेंगे। दूसरा भी सही लग रहा है, चलिए दूसरा सही है। तीसरा है कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। तो देखिए अब ये तो इसमें दूर दराज तक नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसे आप भी आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं कि भैया इसमें किसान और बोरवेल की खुदाई कहां आ गई, लेकिन निहितार्थ की बात है, निहित अर्थ हो सकता है, तो आप जिसको हम कहते हैं दूर का कौड़ी लाना, तो आप दूर की कौड़ी ला सकते हैं कि ठीक है पानी की कमी हो रही है तो बोरवेल खुदवा दो, तो जरूरत होगी किसान तो पानी वहां से ले लेगा, तो सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं होगा, फसलों की सिंचाई हो सकेगी, पानी का अकाल खत्म हो जाएगा, आप दूर की कौड़ी ला सकते हैं, लेकिन यहां फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि आपको तो इन 5 में से ही निर्णय लेना है ना। फिर चौथा है कि कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल के प्रयोग को कानूनी रूप से कि आप इतना ही पानी लेंगे, 1 एकड़ में इतनी ही सिंचाई करेंगे, इस फसल के लिए इतना पानी लगेगा, तो इस तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये प्रैक्टिकल है? अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए, सच पूछे तो थोड़ा सा इरेशनल सा भी है, तर्कसंगत भी उतना नहीं है। आप कैसे पानी को रेगुलेट करेंगे कि किसने कितना पानी लिया, कहां से कितना, उसका नाप जोक ये वो, तो व्यावहारिक नहीं है ये, इसलिए कहा कि उन्होंने प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, तो ये व्यावहारिक नहीं है, तो इस आधार पर आप चौथे को निकाल सकते हैं। फिर 5वां है केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में जो पानी का जो वितरण हो रहा है इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, तो अलग अलग तरीके से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट उन्होंने दिया है, आप नहर बना करके बांध बना करके यही बात कही जा रही है, नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 5वां है यह भी हो सकता है, या आप सीधे सीधे कह दीजिए कि यह भी है। तो जो निकल करके आया 1, 2, 5, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा जो सही उत्तर आ रहा है पहले चरण में वो है 1, 2, 5। 3 और 4 को तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप विकल्प देखते हैं तो आपको कोई भी विकल्प ऐसा नहीं मिलता है जिसमें 1, 2 और 5 हो। आप देखिए, आपको 1 और 2 वाला विकल्प तो है, मिलेगा, लेकिन 1, 2 और 5 का विकल्प है ही नहीं। हालांकि 5 है, बी में 5 है और डी में 5 है, लेकिन उसके साथ 3 और 4 भी घुसे हुए हैं, या तो 3 है या 4 है या 3, 4 है, और 3, 4 इसमें हो नहीं सकते। तो आप देखिए कि 5 भी सही होने के बावजूद जो ग्रुप है उस ग्रुप में वो 5 नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए सीधे सीधे स्वाभाविक तौर पर जो उत्तर होगा मेरी समझ से वो होना चाहिए ए, यानी कि 1 और 2 वाला जो कूट है वह सही है। दोस्तों, चूंकि इसमें इस तरह की स्थितियां उत्पन्न की गई थी, लाई गई थी, प्रैक्टिकल बात कही गई थी, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की, इसीलिए मैंने खासकर इस परिच्छेद का चुनाव किया है। आप अब बेहतर होगा कि आप इस डेली ऑडियो लेक्चर को 1-2 बार और सुनें, समझने की कोशिश करें, अपने अंदर समाएं, और फिर इससे संबंधित अगर परिच्छेद आपको पढ़ने को मिलते हैं तो उन्हें अपनी ओर से हल करके आज ये देखें कि आप सही तरीके से समझ पाए हैं या नहीं। थोड़ी जद्दोजहद करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।